हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारी। हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो महापद्म्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरवतिसे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्तमस्तुते। अंत में उद्धव जी कंक्लूजन कर रहे हैं, अंत में यहीं पर प्रार्थना करके अपना वो वक्तव्य वो समाप्त करेंगे। उद्धव जी 10 महीने गोपियों के साथ में रहे, नंद बाबा जी से मिले, प्रत्येक ब्रजवासियों से मिले और उनके भावों को लक्ष्य किया। जैसे कोई एक व्यक्ति समुद्र के किनारे में पहुंचे, जगन्नाथपुरी हो, बंबई हो, और समुद्र के किनारे खड़ा हो जाए, समुद्र की तरफ देखता हुआ क्या देखेगा? आदि अंतहीन केवल पानी पानी, उसे बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, विशाल विशाल लहर आती हैं, तट से टकराती हैं और फिर कुछ डूब जा करके फिर लौट आती और फिर समुद्र में चली जाती। कब से ये लहरें आ रही, कब तक लहरें रहेंगी, ये भी आदि है। लहर क्यों आ रही है हम लोग को पता है, ये क्यों लहर आ रही है कुछ साइंटिफिक अथवा भौगोलिक कारण दिए गए हैं, चंद्र के वजह से ऐसा हो रहा है, किंतु सब जगह पानी है किंतु वो उस पानी में लहर क्यों नहीं आती, क्यों लहर आती है, इसका भी कारण ठीक से लोगों को नहीं समझ में आया। शास्त्र में कहा गया है शंकरसन जी के पूर्वदेव के श्वास से लेते हैं और उसमें लहर आती है। एक दिन विज्ञान जब थक जाएगा, जब कोई भी कारण है उसका जब टिकेगा नहीं, अंत में बाध्य होकर के इन सब कारणों को मान, और अभी नहीं माने, अभी तो उत्थान चल रहा है, अभी जवानी में है, किसी को देखता नहीं है, किंतु देखते देखते सब उसका फेद हो जाएगा। अंत में ये सब जो हमारे शास्त्र में दी गई हैं चीजें वहीं पर अंत में आकर के वैसे ही उद्धव जी प्रेम के समुद्र के किनारे पर मथुरा से उपस्थित हुए हैं। ब्रज का प्रेम अथाह अनंत अगाध और बड़ी बड़ी लहरियों वाला, लहरी क्या है, अष्टसात्विक भाव,
संचारी
भाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी इत्यादि, ये सब बड़ी लहरें हैं। इसमें सात्विक की बड़ी ऊंची लहरें उठती हैं, अनुभाव वाली कम उठती है, संचारी और अष्टसात्विक वाली बड़ी बड़ी ऊंची उठ रही है। उद्धव जी देख रहे हैं और जिस भाग में श्रीमती राधिका जी है वहां पर यह लहर और ऊंची उठ रही है। उन तरंगों को देखा, बहुत निकट से देखा, उसका एक दो छींटा भी लग गया इनके अंदर, विशेष करके वो भ्रमर को संबंध संबोधन करके जहां कर रहे हैं, भ्रमर को, जिसको भ्रमर गीत कहते हैं, बहुत निकट से देखा किंतु कोई चीज विचार न सके ये लहर इतनी क्यों उठ रही, वो लहर किस लिए उठ रही, पानी कब खौलता है, जब गर्म होता है तब पानी खौलता है, ऊपर से नहीं मालूम होता किंतु पानी अत्यंत अधिक हीट से गर्म से खौलता है, तिरह की आग जल रही और उस आग से ये ताप से ये लहरें इतनी उठी, जिसको ताप अधिक है उसी के अंदर में हृदय में लहर योग उठ रही है। उद्धव जी पहले आए ब्रज में, गौओं को देखा, गौएं धीरे से तड़प रहे, बछड़े तड़प, वहां की कोयल अब पुकार नहीं करती, पहले कुहू कुहू करती, कहला कि कोयल मैन बैठी हुई मौन, और इधर उधर नहीं देखती है, बस आंखों से आंसू आ रहे। वहां का मयूर अब क्रीड़ा नहीं करते, मयूर उन लोगों को भी ऐसे देखा, सब देख कर से उद्धव जी कुछ समझ नहीं सके। तो नंद बाबा के यहाँ गए, रात भर उनके यहाँ रहे, और वहां पर जो हुआ वो 47वें अध्याय में 46 और 47 में उसका वर्णन किया। नंद बाबा जी का प्रेम देखा विस्मित रह गए, इतना प्रेम भगवान के प्रति किसी का हो सकता है, उनकी धारणा नहीं थी, मथुरा में कहीं नहीं देखा, विश्व में कहीं नहीं देखा, अपने से तुलना की। लोग कहते हैं कि आप कृष्ण के बड़े प्यारे हैं, सबसे अधिक प्यारे। मैं तो यहाँ पर देखता हूँ कि चुटकी में कहा मैं उड़ जाऊंगा, कभी कृष्ण के लिए मेरे मुझे रोना नहीं आया, और ये नंद बाबा कुछ कुछ डकर डकर के रो रहे हैं उस ब्रह्म के लिए जो इनके अंदर में भी है बाहर में भी है सर्वत्र है, और ये रो रहे हैं। नंद बाबा परम सौभाग्यवान है, ये कहा आपका लड़का विश्व ब्रह्मांड का अधिनायक पर ब्रह्म है साक्षात, और उसके लिए इतना रोते हैं, रोइए ना। और ये क्या करें, तू अबोध बालक और मुझे तू सांत्वना दे रहा है, रोइए मत रोइए मत। कृष्ण परब्रह्म में पहले नहीं जानता था, मैं तो अपना छोटा सा नादान बालक समझता था, और तू कह रहा है ये परब्रह्म है तुम्हारा पुत्र, इसलिए उनके प्रति जो तुम्हारा ये भाव, इसलिए सौभाग्यवान है। और देख रहे हो जो हमारे जैसा इस विश्व ब्रह्मांड में कोई दुर्भागा नहीं, विश्व ब्रह्मांड में बहुत से दुर्भागे हैं ये बात की, किंतु हमारे जैसा दुर्भागा और कोई नहीं। पर ब्रह्म आकर के हमारे पुत्र में रूप में जन्मा, और फिर उसको प्रेम से नहीं रख सका, और उसको फिर जाना पड़ा वो मथुरा में हमें छोड़ करके, उस प्रेम के भूखा वो लड़का और हमें छोड़ करके, और मैं मर नहीं गया अभी तक जीवित हूँ, ये कह करके रोने लगे। उद्धव जी ने कहा जी हमने क्यों कहा जब तुम बड़े भाग सौभाग्य, किसी का लड़का घर से भाग करके चला जा, कोई कह जा अरे तू तो बड़ा सौभाग्य हो रहा है, तुम उसके लिए रो रहे। उन्होंने कहा हमने बहुत भारी भारी आज पहली बार मैं समझ रहा हूँ मैंने इतनी बड़ी भारी विशाल गलती की, रोने लग गए, सांत्वना नहीं दे सकते। और पासी में जसोदा जी दुपरिया हो गई, जब कृष्ण थे तो वो कैसी थी, आज वो दुपरी हो गई, बस अब आंखों में आंसू तक नहीं, ऐसी स्थिति, आंसू सब समाप्त हो गए हैं, और वो केवल बस आंख बंद करके जहां पर नंद बाबा से बातचीत हो रही है वहां पर बातचीत सुन रही है, बस वो भी कान में जा रहे हैं कि नहीं। उद्धव जी को यह साहस नहीं हुआ कि जरा मैया को सांत्वना दे, मैया उठो जरा भोजन कर लो पानी पी लो, ये नहीं कर सका, ये सब विशाल प्रश्न। फिर गोपियों के यहाँ गए, 10 महीने में पहले तो वो भ्रमर गीत की बात है, गोपियों ने कृष्ण के लिए अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग किया, झूठे चोर लबार जो कुछ कहना था वो सब कहा। उद्धव जी ने कहा अरे किसके लिए ये कह रहे हैं, जो भी लोग ध्यान करते हैं कितनी तपस्या करते हैं उनका गुणगान करते हैं, सत्यम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम
नीतं च सत्ये
उनको इतना सत्य सत्य कहते हैं, और गोपियां झूठ लगा चाटुकार क्या क्या नहीं कर, इतना इनका प्रश्न, और वो जो कह रहे हैं इसको कोई गलती नहीं काट सकता। उद्धव जी वहीं पर खड़े रहे, तनिक भी नमु नचू नहीं कहा, नच नच ये बात आप लोगों का ठीक नहीं, ये नहीं कहे, बस सुनते गए, बस बस ये तो एक दिन की बात कहा, जब कर रहे हैं भ्रमर का रहा है मानो, अरे तुमको इतनी गाली गलौज कर रही हो, वो तो तेरे तुम लोगों के लिए बड़ा प्रेम रखते हैं, बहुत प्रेमिक है, तुम लोगों के बिना उन्होंने मना किया है या कहने के लिए, ये वो तो तुम लोगों के दिन रात तुम लोगों की चिंता करते हैं, ऐसा तो विश्व ब्रह्मांड में प्रेम का फल देने वाला नहीं, और तुम उनको इतना करे यहाँ मत ये सब बातें कहना, ये मथुरा वाली को सुना, मथुरा वाली को सुना, नहीं यहाँ मत सुना, तुम्हारी यहाँ पर वो क्या नहीं बिकेगी, तुम्हारा यहाँ पर वो दाल नहीं गलेगी, तुम्हारी ये दाल नहीं गलेगी, मथुरा का पानी अच्छा है, खारा है, दाल नहीं गलती,
बोली गाली पानी खाली,
तुम्हारी दाल नहीं गलती, तुम मथुरा वाला है, मथुरा में लौट जाओ, वहां के लोगों को सुनाना, यहाँ पर ये सब बातें मत करना, तुम ये कह रहे हो कि परमपति बता लक्ष्मी जी, अरे उनका गुणगान करती हैं और उनके चरणों को पुलोटा करती हैं, आप उन ऐसे लोगों के लिए जो आराध्य हैं उनको तुम ऐसा कह रही है, अरे वो भोली भाली हैं लक्ष्मी, सर्व सिद्धि है, उनको बातों में बहला लेते हैं, हम ऐसी चाटुकारी से उनकी बातों को हम लोग विश्वास नहीं करती, यदि कुछ दिन और हो जाए ना तो वो अपने आप समझ करके समझ ही लीजिए ये कैसे हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और की तो बात क्या है, मृगरू कपिंद्रम दिव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रीमजित विरूप स्त्री जीत कामयानम
बलिपमी बलिमद्धा
बलिमपि बलिमत्वा अवेष्ट अर्धं च वत्जः तदमसित सखै दुस्तव्यस्त, अपने प्रभु की बात सुनना चाहता है तू, कैसे हैं बतलाऊं, तुम्हारी भी श्रद्धा गड़बड़ हो जाएगी, न सुनो तो अच्छा है तुम लौट जाओ, यदि इतनी ही बात है और सब समय उन्हीं को तुम लोग दोष देती है तो फिर उनकी चर्चा क्यों करती, उनकी चर्चा तो छोड़ना नहीं अच्छा, दूसरी बात है धन्यताम अन्य वार्ता, मन्नताम अन्य वार्ता मैंने दूसरी बात छोड़, ये बात तो उनके संबंध में बात करते, यही तो बात है कि हम छोड़ नहीं सकते, प्राण छोड़ देंगे किंतु उनकी बातों को नहीं छोड़, जब तुम्हारे प्रभु की बातें बतलाते हैं, वो कहते हैं मेरा जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम और कोई नहीं है, ये उन्हीं की बात नहीं, काले जितने हैं जीव जंतु भगवान के अवतार इत्यादि जितने काले हैं वो विश्वसनीय नहीं है, सब काम की ऐसे राम भी एक कोई काला व्यक्ति था, वो भी अपने को तुम्हारे जैसा ही भगवान करते, और सब में समदर्शी परम धार्मिक हैं, एक पत्नी व्रतधारी, किसी का अनिष्ट नहीं करने वाले, किंतु जब दंडकारण्य में गए अपने पत्नी और भाई के साथ, कहते हैं कि मैं तो स्त्री जीता हूं, मैं स्त्री जीत हूं, और हैं कैसे असल में कामी, अपने स्त्री के वशी हो, अच्छा बुराई ये नहीं विचार करने का उनको, यह काले वाले जैसा उसने कह दिया बस वैसा, हिरण को पीछे चलो तो चलो, अरे बाली ने उनका क्या बिगाड़ा, सुग्रीव और बाली दो भाई, दोनों में लड़ाई हो गई, तुमको समदर्शी दोनों को बराबर रहना चाहिए, दोनों में सुलह करवा देते, ये करना चाहिए, तुम भी कामी वो भी कामी मिल गया सुग्रीव, वो भी अपनी स्त्री से दुखी, तुम भी अपने स्त्री के दुख से दुखी, दोनों दुखी मिल गए, हम मिल करके षड्यंत्र रचा, हम तुम्हारे शत्रु को हरा करके तुम्हारी स्त्री को मिला देंगे और हम तुम्हारी स्त्री को मिला देंगे। अग्नि की साक्षी रख करके ये प्रतिज्ञाएं हैं और छिप करके मारे, ऐसे जो ऐसे नहीं मारे। सुग्रीव को कहा जल लड़ने जाओ, मैं उसे बध कर दूंगा। सुग्रीव मारपीट खा करके और उल्टी खून की करते हुए जब लौट करके आया था, जब प्रभु मैं तो समझता था कि आप सत्यवादी हैं, इस तरह से मुझे मारवाया। यदि एक मिनट बात होती तो मैं मर ही गया होता। वो तो मैं किसी प्रकार से भाग करके निकल आया। आपने आपको मरवाना ही थी तो पहले ही हमको न भेजते, ऐसा आपने कहा। और अंत में फिर ये छीक करके एक बाण से उसे मारा और बेचारा उसने कहा जैसे अच्छा तुम तो बड़े धर्म ध्वजी हो, धर्म की ध्वजा उड़ाते हो, तो ये तो बतलाओ हमें क्यों मारा, हमने तुम्हारा क्या अनिष्ट किया था ये बतलाओ। रामचंद्र बतलाएंगे तुम्हारा क्या अनिष्ट किया, राम का क्या अनिष्ट किया। तो उन्होंने कहा दे हमारे मित्र का अनिष्ट किया। मित्र कब से मित्र बना, किस लिए मित्रता हुई, निस्वार्थ रूप में आपकी मित्रता हुई। तो जब कोई उत्तर नहीं आया तब तो उन्होंने वो बतलाया कि
अनुज बधु भगनी सुत नारी ये तीन कारण के
दृष्टि विजो कहीं तो उनको मैं मारता। यदि कोई अजी तो बहुत लोगों ने तो विलो का, ये सुग्रीव भी उस दोष से मुक्त थे, ये तो पहले ही से ताराजी से प्रीति रखते थे और इसीलिए बाली बिगड़ा उन पर, वो दोष तो इन्होंने भी किया। अंत में इधर उधर से सफाई देकर के किसी प्रकार से बचे। अरे बानर का मांस तो खाते भी नहीं और उसको उन्होंने मारा, कोई भी बहरिया तक नहीं उनको मारा, कोई हिंदू नाम का कोई व्यक्ति हो नहीं मारा, उन्होंने मारा। बानर कहते हैं ना नर, वैसा ही पाप लगता है। अच्छा नाव छोड़ दिया, एक पत्नी बतधारी सुपर्णा, सुपर्णखा है, सब सीधी लड़की, छल छंद नहीं। उसने आकर के स्वयं निवेदन किया, आप बड़े सुंदर हैं, मैं भी सुंदरी हूं, मैंने अपना चित्त तुमको दे दिया, अब विवाह करके हम लोग रहे। ये सीधा सा प्रस्ताव, इसमें क्या छल कपटता है। अरे आप वैसे ही कह देते कि हमारी मैं विवाहित हूं और एक पत्नी व्रतधारी हूं, इसलिए तुमसे विवाह नहीं कर सकते। छल छंद बनाया कैसे, अपने भाई को दिखलाया जैसे इससे शादी कर लो, इसकी शादी नहीं है। अच्छा ये झूठ बोलने की क्या जरूरत, झूठ बोल। उसने कह दिया जैसे भाई मैं तो इनका दास हूं, वो दो चार दस बीस रख सकते हैं स्त्री
शादी करने, राजा ने बनेगी हम नौकर।
फिर उनके पास में गई बेचारी, फिर वहां से उन्होंने लौटा दिया, फिर इनके पास में ऐसे दो चार बार दस्तार घुमाया। तो फिर अंत में राम ने कहा जैसे देखो इसे खिलवाड़ मत करो, नाक और कान दोनों साफ कर दो, बस तलवार पहनी तलवार, बस नाक और कान साफ कर दिए। अच्छे उसको मार करके भगा देते, ऐसे ही भगा देते, कहते जी भैया हाथ जोड़ देते, मुझे जरूरत नहीं है आप सीधी चले जाइए, तो बेचारी मान जाती। किंतु उसको इधर से उधर इधर से अपमानित करा करते। अनंत में किस कारण से नाक कान काटा ये बतला सकते हैं, ब्राह्मण से पूछ रहे हैं दूध से किसने ना काम का। वो कहते हैं अब इसका उत्तर क्या दे, अरे स्त्रियों का सहज है, जहां रूप देखती हैं गुण देखती हैं वहां पर हो जाती हैं, तो मोहित हो गए। तो ये दोष आप ही का है ना, इतना सुंदर रूप लेकर के और उसमें भी यहां पर अपने केशों को बांध दिया ने? और धनुष बांध लेकर के चल रहे हैं, कितना सुंदर है। और कोई मोहित हो जाए तो उसका दोष क्या? दोष तो आपका है। इस पर भी आपने ना कान उसके काट लिए, क्यों? तू बतला सकता है? मैंने उसको ब्राह्मण को पूछा, बतला सकता है कि क्यों? तो वो तो निरुत्तर, वो तो भन भन करता कर रहा है। अच्छा, मैं समझ गया, तेरे पास में उत्तर तो नहीं, मैं बतला देती हूँ, इसलिए कि अब भविष्य में कोई इसे शादी न कर सके, इसका जीवन सारा जीवन चौपट कर दिया, यदि नाक कान होता ना तो दूसरे से शादी कर दी, ये तो अब कोई भी नहीं शादी। और उनका दुर्गाऊ काले बालों का बामन होकर के स्वर्ग लोक में देवता के रूप में बामन के रूप में बड़ा सुंदर डील डाउ है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बावन अंगुल के बन गए, छोटे से बच्चे बन गए, और मालूम होता है बहुत सरल सीधा मिष्ट मधुर भाषी है, और ब्रह्मचारी बालक ब्रह्मचारी बन गया, ब्राह्मण का बहुत छात्र, और बलि महाराज जी के सामने चुपचाप बैठ गया, मान महाधैर्यशाली और सहिष्णु है, इसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, बस राम राम कह रहे हैं जैसे भजन कर। जब सब लोग लेकर के चले गए तो भी बैठा राजस्थान पर, बलि महाराज हाथ जोड़कर बोली, महाराज आप तो बड़े तेजस्वी बालक हैं, साधारण नहीं मालूम होते, कुछ जरूरत है? तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा जी जरूरत है तो बतला देता, जरूरत तो जरूरत नहीं बता, आपके प्रपितामह जी जो थे बड़े धर्मात्मा थे, आपके पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, प्रहलाद महाराज जी का नाम कौन नहीं जानता, उनसे यदि कुछ भी मांग लिया उनका प्राण भी तो दे देते थे, और कभी अपनी बात से मुकरते नहीं थे। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा प्रबंधक कहने की क्या जरूरत, तुम सीधे से कह देते जी हमको इसकी जरूरत नहीं हो, अच्छी तरह से लंबा चौड़ा ये पुल बांध करके। अरे उन्होंने कहा जी आशा तो कुछ मांगिए, क्या चाहते हैं? तब बोले जैसे, अच्छा आप संकल्प तो कर लीजिए, जो मैं जो दूध जो कह दूंगा वो दे दूंगा, तुम्हारे वचन पर विश्वास नहीं होता है, वचन का ये तो रीति है शास्त्रों की, ये देना होता है तो पहले संकल्प लेते हैं, आप संकल्प कर दीजिए। कोई काम किसी के यहाँ जाएंगे कहेंगे जैसे, अच्छा पहले तुम गंगा की शपथ कहो, जैसे इस तरह से जो चलाक चतुर होते हैं फरेबी लोग, वो इस तरह से बांध देते हैं अपने काम करने, ऐसे ही उन्होंने घाट पाट सब बांध बूंद करके रेडी करके अंत में कहा, मुझे तीन पग की जरूरत है। इतने में शुक्राचार्य आ गए, बोले जैसे, अरे ये खबरदार मत देना, सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने कहा जी अपनी बात याद रखना, तुमने संकल्प किया है, तुमने संकल्प कर लिया है, और यदि तुम नहीं अब देगा तो फिर तुम हो गए, तुम उसका फल पाप होगा, जिसे ये भूल न जाए। अंत में उनसे ठीक करा लिए जी हाँ संकल्प कर दिया है और तुमको देगा, मांग लिया, और उसको लेना चाहिए था जिससे वर मांगा है, जिस शरीर से उसी से मापना चाहिए, मापने के समय में वो एकदम अपना इतना शरीर बढ़ाया जो ब्रह्मांड तक पहुंच गया लंबा, और उसके डग हो गए जो पृथ्वी को एक डग में ही, भैया दूसरा डग कहां मापूं, उसे पताल पताल सब कुछ को माप, तीसरे डग के लिए कोई स्थान नहीं, कहा जब तीसरा डग कहां रखूं, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा, पतवाय होगा, बतलाओ कहां रखूं। उनकी पत्नी और लड़कियों ने कहा, लड़की थी ना, कहने अरे ये तुम्हारी छली है, तुम जिस पैर से मांगा था जिस शरीर से उससे मांगो, हम इसे नहीं देंगे। ना बलि महाराज यहां से जाने दे जाने, बड़े जीवित ले दिया सब कुछ, और अंत में उनको बांध करके नागफा से वहीं पर गिरा। उपमा दिया, ये कैसे कैसा उन्होंने किया, एक काले पक्षी के उपमा है, किससे?
कौआ।
कौआ, कौआ कैसा है? कुही का। और वैसे ही धूर्त होता है मनुष्य में, नापित धूर्त।
नरानं नापितम धूर्तम।
और पक्षी नाम,
पक्षी नाम वायस तथा
वायस धूर्त में बुद्धिमान नहीं,
धूर्त
धूर्त होते हैं। उस सबको ठगने की इसमें रहते हैं। तो वो क्या करता है, यदि कोई टोकरी पर ले करके जा रहा हो मालपुआ इत्यादि पेड़ा लड्डू, तो ऊपर से उड़ करके आएगा खाएगा, और जो ले जा रहा है उसको ठोकरों से मारता है, चोंच से मारता है। जिसका खाता है, जिस पत्ते में खाता है उसी को छेद करता है। तो ये जाति ही ऐसी है। उद्धव जी कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, कोई उत्तर, उनका अगाध प्रेम दे। इन्होंने कहा भाई उसका तुम क्यों चर्चा करते हो, छोड़ो उसकी चर्चा। तब वो कहते हैं उसके बाद अनुचरित जद लीला,
जद अनुचरित लीला,
जद अनुचरित लीला कर्म संयुष पिवृत सकल ददन विधु तो दंद धर्म अभिनष्टा शपथ गृह कुटुंबम दिनमत सिज्जदीना बवा विहंगा भिक्षु चर्चा चरण। अरे बहवह, तू कहता है कि उनकी चर्चा मत कर, हम उनके फेर में पड़ गए, अब तो चाहने पर भी उसकी चर्चा को हम छोड़ नहीं सकते, किंतु भविष्य में कोई चर्चा उनकी न करे और उनके जाल में न पड़े, इसके लिए हम लोग सावधानी के लिए कह रहे हैं। बहवा यो विहंगा भिक्षु चर्चा चरण, जिनके माता पिता ने बड़े आदर के साथ में पाला पोसा, जिन चिड़ियाओं को, चिड़िया मैंने जिन लड़के और लड़की बड़े प्रेम के साथ में पाला पोसा सहेला और बड़े अच्छी तरह से, उनको किसी प्रकार से वो नारद जी जैसे लोग या और लोग मिले, भागवत की पोथी दबाकर बिना पैसे गांव-गांव में सभाएं करके और उसकी लीला कथाएं कहते हैं, और उसको सुन करके जिनके पर भी नहीं निकले हैं, अभी आंखें भी ठीक से नहीं निकली, ऐसे जो छोटे छोटे नादान शिशु सावक हैं, लड़कियां आते हैं लड़के, वो बेचारे सुनते हैं और उनके कानों में प्रवेश करते हैं, और फिर चर्चा करें उनकी, माता पिता को रोते हुए छोड़ करके घर में सबको, और लाते हुए छोड़ करके बस भिक्षु चर्चा है, वृंदावन में आकर के एक एक रोटी माधुकरी मांग करके पेड़ों के नीचे रह गए, आकाश के नीचे रह करके कहाँ कहाँ कैसे दुख कष्ट से, जमुना के किनारे इधर एक दो नहीं हजारों भिक्षु चर्चा है। हमारी यही दशा है। जब अनुचरित लीला कर्ण पीयूष के वृत्त, एक बार भी उनकी लीला कथाएं या उनका नाम कानून में ले लिया, तो हमारी दशा दैसे उनकी दशा। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भावों को देखकर उद्धव जी उनकी प्रेम की लहरियां देख करके उसमें डूब और उतरा रहे, सुन रहे हैं दूर से, भीतर में प्रवेश नहीं कर सकते। तब उन्होंने उनकी वंदना आरंभ की। हमने देखा सुना है कि 10 महीने जब भी रहे होंगे तो कहीं नंदगांव पहुंचे होंगे, उद्धव क्यारी में उनके साथ में वार्तालाप हुई है, कभी उद्धव कुंड देखा है राधा कुंड के समीप में, उद्धव कुंड नहीं गए, वहां पर दूसरा कोई पुरुष जा ही नहीं सकता, हम लोग कैसे जाते हैं, हम लोग को छोड़ दे, हम लोग तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, माया के ऊपर में रहते, इसलिए न तो राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन न उनमें स्पर्श और कुछ नहीं, एक रेणु कणा का भी स्पर्श होना बड़ा भारी कठिन। उद्धव जी कहते हैं ये एक रेणु के लिए वंदना करेंगे, वही श्लोक है वंदे नंद ब्रजेश तिना पाद रेणु अभिक्ष, उसी के लिए अभी मुख बंद कर रहा है। उद्धव जी को क्यों लोभ हुआ एक चरण रेणु, तो वो नंदगांव में गए, और वहां पर ये भ्रमर गीत इत्यादि श्रवण किया गोपियों के मुख, वो तो सोई हुई है, उद्धव जी को नहीं देख रही, आंखों से पानी की धारा बह रही है, अश्रुओं की धारा, वो मरमर करके जी रही है और जीते जीते होकर के मर रही है। एक सोनी सी पुतली कमल के फूलों पर सेज पर लेटी हुई, मरी हुई की जीवत ये पता नहीं, किंतु जो बोल रही है धीरे धीरे, उसी को उद्धव जी दूर से सुन रहे हैं और सुन करके विचार कर रहे हैं। वहां के बाद में वहां पर राधा कुंड में आए, वहां की सब गोपियां बातचीत में करते करते रोते 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 कहने लगे, उद्धव ये पाशनी में कुसुम सरोवर है, कितना हमें धोखा दिया, यहाँ पर आकर के अपने हाथों से फूल के गजरे बनाते और हमें पहना देते और हम लोग भी लेकर के उनको पहनाते, वो स्थान है, कितनी प्रेम की बातें यहाँ है। ये राधा कुंड देख रहे हो, दूर से देखो सूर्य पूजा की कितनी बातें और वहां मिलन की बातें, वहां पर सब गोपियों की अलग अलग कुंजों की बातें और वहां पर जो बीती हुई बातें थी लीला कथाओं का उन्होंने कम में बांधने गए। देखो उद्धव यहीं पर हम लोग लुक लुकी की खेल खेलते, कृष्ण भी डूब जाते और डूब करके बहुत दूर हम खड़ी हैं पानी में, वहां आकर के हमारे पैरों को पकड़ देते, हम समझ जाते जैसे वो पकड़, फिर वहां से वहां पर पहुंच जाते, ऐसी ही अपनी राय। यहाँ पर ये फिसली नहीं है ना, काम बन फिसलनी शिला, यहाँ पर हम सब मिलकर के खेलती ऊपर से फिसलती, ये सब ऊंचा गांव में वो देखा सखीगिरी पर्वत में फिसलनी शिला और या अलता पहाड़ी कहते हैं कृष्ण की राधा जी के चरणों का महावर की ललिता जी का लगा हुआ है, उन लीलाओं का कथा का स्मरण दिला करके विलाप करती थी, पूरा वहीं पर श्रीमद भागवत वहां पर पढ़ा दिया उनको उद्धव को, कौन पढ़ा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी नहीं, उद्धव जी को ये गोपियां पढ़ा रही, जो जो लीलाएं हुई अपनी बीती हुई लीलाओं को और उन स्थल पर ले जाकर के कोई विशेष रूप से कहा, ये मेरी मातृभूमि यही पर मैं जन्मा था इस घर में, मैं कहूँ नहीं जाकर के किसी को ले जाकर, हमारे गुरु जी का ये हमारा यहाँ पर जन्म स्थान, यहाँ पर ये समय खेल खेला था, यहाँ पर मैं पढ़ता था, ये घर में अभी स्वामी जी के सब शिष्य आते हैं, जब कहा जाता है कि यहीं पर इस बीच में उन्होंने संन्यास और उस घर में रहते थे, यहाँ पर कीर्तन करते थे पाठ करते थे, श्रद्धा से चरण चुकाते हैं सब लोग, हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसलिए महाराज जी के साथ इसलिए ये सब करते हैं। इसलिए पूर्व की स्मृतियों को यहाँ पर उद्धव जी को एक एक बातें जो ब्रज में हुई थी 10 महीने में ले जाकर के बनाया, उद्धव जी ये सब चीजों को जानते नहीं थे, उन्हें स्थान दिखलाया होगा बंसीगढ़ यहाँ पर की गोपियां गोपियों ने कहा होगा यहाँ पर हमारे घुघरू टूट गए थे और कृष्ण ने यहीं पर बैठा करके हमारा घुघरू बांधा, श्रृंगार बट दिखलाया होगा यहाँ पर हमारी बेड़ी गुथी और श्रृंगार किया, ये सेवा कुंज है, सेवा कुंज में क्या हुआ, कृष्ण ने गोपियों की सेवा की चरणों की, ये सब स्थान हमने तो जो सुना था आज तक भगवत भक्ति की बातें, वो भगवान की सर्विस का नाम, सेवा का नाम है इस भक्ति ना? उत्तम भक्ति में कहा भी गया है कि अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, ये कहा गया ना, हम देखते हैं सब विपरीत, विपरीत है कि नहीं, जो उद्धव जी को बतलाया गोपियों ने वो तो सब देखा जो कृष्ण ही गोपियों की सेवा सब जगह करें, उनके बसित दुख होकर के करें, भक्ति में कहा गया अन्य अभिलाष को छोड़कर ज्ञान कर्म योग तपस्या व्रत होम साध्याय सोचकर छोड़कर अनन्य रूप से तन मन वचन और भाव के द्वारा सब समय कृष्ण के अनुशीलन का नाम, अनुशीलन माने सेवा, सेवा का नाम भक्ति है, उत्तम भक्ति। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गोपियां क्या सेवा कर रहे हैं, कृष्ण ही देखते हैं कि यहाँ पर नंद बाबा, यशोदा, सखा और सखियों सबकी यही सेवा कर रहे हैं। अरे उनकी गायों की सेवा कर रहा है कृष्ण, कर रहे हैं नंद बाबा की 9 लाख गायों की सेवा कर रहा है, उनको पानी पिलाते हैं निरी निरी कह करके। जो ब्रह्मा ब्राह्मणों के पवित्र ब्राह्मण जो हैं मुनि ऋषि, उनके सोमरस को प्रत्याग करते हैं, उनके साम गीति को, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद की स्तुतियों को कृष्ण नहीं सुनते, बधिर रहते हैं वहां, उनका कान बारे रहते हैं, वो सुन नहीं पाते। और गोपियों के घर में या क्या करते हैं, तीरी तीरी निरी निरी गायों को कह रहे हैं, गायों के बछड़े के पैर थक जाते हैं तो क्या करते हैं, उठा करके गोदी में लेकर के चलते हैं। कभी अंकुर खाते समय एक बछड़ी थी और उसको लग गया घास और उसमें से रक्त प्रवाहित होने लगा, कृष्ण ने अपना पीतंबर चीर करके उसको कितनी सेवा। वही जब गाय बड़ी हो गई ना बछड़ी, तो कृष्ण ने गैया क्यों चराना आरंभ किया,
बछड़े के साथ जाती नहीं
थी। अब वो जो बछड़ियां जी थो बड़ी हो गई हैं और वो कृष्ण यदि बछड़े चराते हैं छोटे छोटे, तो वो बछड़ियां चरेंगी नहीं क्योंकि बड़ी हो गई है ना। अब वो तो कृष्ण के साथ में अभ्यस्त हो गई है जाने के लिए, इसलिए दूसरों के साथ में वो जा नहीं सकती। इसलिए कृष्ण उन बड़ी जो गैया अब हो गई है, जिनके बछड़े भी अब होने लगे हैं बछड़े, उनको लेकर के जा रहे हैं, उनको चरा रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके पैर दबाते हैं बच्चों के, और कितनी सेवा टहल करते हैं। तो उन गोप और गोपियों की तो बात ही है, फेक विपरी ये प्रेम में ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ पर उद्धव जी देख करते हैं, इसलिए तब उन्होंने कहा अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक साम जन्म क्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन हो करके। आज कहा ब्रज के जितने भी ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी नहीं, ब्रज के जो भी जीव जंतु जो कुछ हैं, सब कृष्ण के मित्र हैं, बंधु हैं, सखा हैं, सब इनके प्यारे मित्र हैं। जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये सब कुछ तब उनकी महिमा देख करके आशा मोह श्लोक कहा, और उसके बाद में तब इसको ये कहा। जब अनुभव उनको हुआ इस बात, और मैं उस प्रेम बेला की बेलाभूमि में भी मैं नहीं उपस्थित हो सकता, बेलाभूमि कहते हैं तप स्थान, मैं उसकी एक कण को भी मैं स्पर्श नहीं कर सकता, तब फिर उन्होंने ये भाव उठाया कि मैं गोपियों में से कोई एक होकर के रहूं, और उनकी सेवा को ये भाव को छोड़ दिया, धूलि को भी स्पर्श कर सकूंगा इसकी भी भावना छोड़ दी। तब ये कहते बंदे मैं दूर से साष्टांग प्रणाम किया उस धूली को, फिर मैं स्पर्श नहीं कर सकता, वृंदावन की धूली है, हम लोग स्पर्श कर सकते हैं कि नहीं, जरा विचार करके देखो तो वृंदावन की धूली कहना क्या है, प्रेम, एक एक प्रेम की मूर्ति है और सब कुछ दे सकती है, हम लोग उसको स्पर्श कर सकते हैं नहीं कर सकते। जब उद्धव जी कह रहे हैं मैं नहीं स्पर्श, उठा करके ले ले सकते थे, लगा लेते, देखा जे ये चिन्मय पदार्थ, ये नहीं हुआ, तब दूर से उन्होंने वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणुम अभिघ्नसा, निरंतर मैं उनकी धूली की वंदना करता हूं, अपने वस्त्र पर नहीं रख सकता, शरीर में नहीं लगा सकता, जासा हरि को खोज जीतम, जिनके मुख से निकली हुई जो हरि कथाएं हैं वो विश्व ब्रह्मांड को, भुवन त्रय को, जड़लोक, जीवलोक और गोलोक ब्रज धाम को सबको ये पवित्र करने वाला है। अथवा जासंग हरि कथोपनिषद, जासंग माने जिनके संबंध वाली जो कथाएं हैं, संबंधित कथाएं हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इन कथाओं के श्रवण और बोलने से ही, कीर्तन से ही वो भाव आएगा। इसलिए विश्व ब्रह्मांड को पारण करने वाली, इसलिए सनातन गोस्वामी उनकी अवतारणा कर करके हम लोगों को सुनाया काम दिया, या सुखदेव गोस्वामी ने, व्यास जी ने श्रवण कराया और हम लोगों को दिया। डायरेक्ट रूप में तो हम लोग उसको पा नहीं सकते, इसलिए हरि कथो गीत पुनात ध्वनंतरण, कैसे इसको सनातन गोस्वामी जी बतला रहे हैं इस प्रकार से। एवं ताशा महात्मा परम पृथ्वी, उसके महात्मा को 10 महीने के बाद में अनुभव किया, गोपियों से तरह तरह की बातें हुई, अंतिम बात यही हुई थी, गाड़ी छकरा है वहां से तो आए रथ में, अब जाने के समय में कहा अब मैं रथ में नहीं जाऊंगा, रथ को छोड़ दिया। नंद बाबा एक शकट ले आए और उसमें दूध दही घी मक्खन और उसे बनी हुई चीजें, एक एक गोपी एक एक चीज दे रही है, ये कृष्ण को देना, ये कृष्ण को देना, ये कृष्ण को देना, ये आर्ग पुत्र को देना, ये बखारी को देना, ये अघारी को देना, क्योंकि नाम नहीं ले सकती, यशोदा जी तो उसे दिया, वो नाम ले लें, नंद बाबा नाम ले लें और गोप लोग नाम ले लें, किंतु गोपियां नाम नहीं लेंगे कृष्ण, इसलिए अघारी बखारी ये सब कहें,
आर्यपुत्र
आर्यपुत्र इत्यादि लेते हैं। दाऊ जी के भैया का भैया को, छोटे भैया को,